أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان من، آج اکتوبر 1989 کی 25 تاریخ ہے، 26 تاریخ معاف کیجیے گا، اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ لقمان کی آیت 14 سے ہو رہا ہے، 3:1-4. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی آیات میں لقمان کی چند حکمت آموز باتوں کا ذکر ہو رہا تھا. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہم یقینی طور پہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کا شمار زمرہ انبیاء میں تھا، کیونکہ قرآن نے ایسا نہیں کہا، لیکن جو کچھ اس میں کہا گیا ہے وہ قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق ہے، بلکہ اسی کے احکام ہیں، اسی کی تعلیم ہے. تو پہلی دو آیتوں تک تو ہم آ چکے تھے، ان میں شرک کا ظلم عظیم، اس کی میں نے وضاحت بھی کی تھی کہ شرک کو ظلم عظیم کیوں کہا گیا ہے، اور شرک کیا ہوتا ہے، خدا کے سوا کسی اور کی محکومیت یا اطاعت اختیار کرنا شرک ہے، اور ظلم عظیم اس لیے ہے کہ اس طرح سے نہ خدا اپنے مقام پہ رہتا ہے کہ اس کے برابر ہم دوسرے کو دکھا دیتے ہیں، اور نہ انسان اپنے مقام پہ رہتا ہے کہ اسے اس کے مقام سے کہ جو مقام محکومیت کا تھا خدا کا، اس سے اونچا لے جاتے ہیں اس کو. اس لیے یہ ظلم ہے، اور کیونکہ معاملہ ایک طرف خدا کا دوسری طرف انسان کا ہے، کائنات میں سب سے اشرف، سب سے صاحب اختیار انسان، خدا جس پر ایمان ہے اس کی کیفیت یہ کہ اس سے دوسرا کوئی حاکم نہیں، تو ان دونوں کو جب اپنے مقام سے ہٹا دیا جائے تو یہ ظلم عظیم ہو جاتا ہے. یہ ہے صرف جسے قرآن کریم نے کہا، نہ کہ بت پرستی، صرف پرستش کا تصور قرآن میں نہیں آتا. لقمان کی باتیں جو ہو رہی تھیں تو اگلی بات اس نے یہ کہی ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. دونوں آیتیں میں اکٹھی پڑھتا ہوں، مضمون ایک ہی ہے. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. ہم نے یعنی خدا نے والدین کے متعلق بھی انسان کو کچھ احکام اور ہدایات دی. پہلی بات تو یہ کہی کہ اس دماغ کو دیکھو کہ پہلے تو وہ 9 مہینے تک اس بوجھ کو اپنے رحم میں اٹھائے پھرتی ہے، اور پھر اس کی رحم کے اندر ہی اس طرح سے پرورش ہوتی ہے کہ ماں کا اپنا ہی ایک جو ہے نا جسم کا، کہ جس سے یہ بچہ تیار ہو رہا ہے، تو گویا وہ اپنے جسم کا ایک حصہ جو ہے منتقل کیے چلی جا رہی ہے اس بچے کی تخلیق کے لیے. خود کمزور ہوتی چلی جاتی ہے اور اس بچے کی تخلیق کیے چلی جاتی ہے. عجیب انداز سے یہ چیز کہی. پھر اس کے بعد وہ پیدا ہوتا ہے، کم از کم 2 سال تک اس کو دودھ پلاتی ہے، تو یہ جو دودھ ہے یہ بھی تو کوئی اندر خارج کی مشین تو لگی ہوئی نہیں ہے جہاں سے وہ دودھ ہے. ماں کے جسم کا اپنے جسم کا حصہ ہوتا ہے، اس کے خون ہی کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ وہ جسے بچے کی پرورش کے لیے ادھر منتقل کرتی چلی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق جو کہا تھا کہ صفت رحیمیت ہے اس کی، وہ جو میں نے عرض کیا کہ رے ہے نیم اور رحم جو ہے مادہ ہی ایک ہے، تو خدا کی صفت رحیمیت اور اس کے ساتھ ماں کی یہ جو رحیمیت ہے یہ دونوں شامل ہوتی ہیں اس بچے کے اندر. انشکر لی والے والد ہے، کیا بڑی عجیب چیز ہے. پہلے کہا تھا انشکر للہ، کہا کہ اس نے خدا کا شکریہ بھی ادا کرو. شکر کے معنی مفہوم میں پہلے بتا چکا ہوں، اب میں یہ لفظ ہی انہی کی تکرار کرتا چلا جاؤں گا. مفہوم تو سامنے آ گیا ہوا ہمارے. اب یہاں کہا کہ خدا کا شکریہ ادا کرو اور اس کے ساتھ ہی ان والدین کا بھی شکریہ. میں نے کہا کہ یہ جسے کہا شکریہ ادا کرو یہ کیا چیز ہے؟ باقی کائنات کو چھوڑ دیجیے, انسانی بچے کو لیجیے. رحم مادر کے اندر جو انتظام ہے اس کی پرورش کا, ربوبیت کا, یہ رحیمیت ہے نا, جو میں نے عرض کیا تھا کہ رحیمیت کے معنی کیا ہے. خدا کی طرف سے سامان نشو و نما ملتے چلے جانا, نہایت لطافت اور رافت اور محبت کے ساتھ بلا مزد و معاوضہ, یہ خدا کی رحیمیت تھی. اس کا ایک نظام ہے, اس کا ایک انتظام ہے جو رحم مادر میں ہوتا ہے. اس میں اس ماں کا اپنا کوئی حصہ خود نہیں ہوتا, یعنی یہ اس کی اپنی کوشش سے, اپنے کسب و ہنر سے نہیں ہوتا, اس کے اختیار و ارادے سے بھی نہیں ہوتا. تو یہ تو خالصتاً خدا کی طرف سے رحیمیت ہے. تو یہ جو درجہ ہے, یہ جو حصہ ہے اس رحیمیت کا, اس کے لیے تو خدا کا شکریہ. اب اس کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے, اس پیدا ہونے میں یہ جو اس کے لیے ذریعہ پرورش ہے جسے دودھ کہا جاتا ہے, یہ بھی خدا ہی کے نظام کے تابع یہ ہوتا ہے. وہی جو رحم مادر کے اندر تھا اسی کی ذرا بدلی ہوئی شکل اب باہر آئی. اس میں ماں بھی شریک ہوتی ہے, یعنی رحم کے اندر یہ بات نہیں تھی کہ ماں نہ چاہے تو بچے کی پرورش جو ہے وہ نہ ہو سکے. لیکن یہاں آنے کے بعد سامان خدا کا دیا ہوا عزیزہ نے من بڑی گہری چیزیں جو قرآن کہا جاتا ہے, یوں ہی نہیں اس نے والدین کا ذکر کر دیا. یہاں باہر آنے کے بعد سامان خدا کا دیا ہوا ہوتا ہے, لیکن اس کے اندر اس بچے کی بر وقت دودھ دینا, اسے ہی دودھ دینا, اس کی حفاظت کرنا, اس کی پرورش کرنا, یہ برداشت کرنا, یہ تو ماں پہ ہوتا ہے. گویا پہلا مرحلہ جو تھا بچے کی نشو و نما کا, وہ خالصتاً خدا کی طرف سے سامان بھی تھا اور نگہبانی بھی اسی کی تھی, ماں کا دخل ہی نہیں تھا اس کے اندر. وہ تو جیسا اس نے کہا ہے قرآن کریم نے جو کہا ہے کہ وہ تو ایک بوجھ اٹھائی ہوئی تھی, حمل کے معنی بوجھ ہوتا ہے, اس میں اس کا دخل نہیں تھا. اب بچے کی پیدائش کے بعد سامان نشو و نما تو اسی کی طرف سے مل رہا تھا, لیکن اس میں اب ماں کا دخل ہو گیا ہے کہ وہ جس طرح چاہے اس سامان نشو و نما کو آگے صرف میں لائے اس بچے کی پرورش کے لیے. تو اب انسان یعنی ماں اور خدا اس میں دونوں شریک ہو گئے. ماں کے اندر ایک جذبہ جو ہے بچے کی پرورش کا, وہ ایک عجیب و غریب چیز, یہ مشترک ہے حیوان میں بھی اور انسان میں بھی. حیوانی بچے کی ماں جو ہے وہ بھی اسی طرح سے بچے کو دودھ دیتی ہے, اس کی پرورش کرتی ہے. اب انسانی بچے کی ماں جو ہے اسے اس سے زیادہ تردد, اس سے زیادہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے بچے کی پرورش کے اندر, بڑی احتیاط چاہتا ہے. اور پھر اتنا لمبا عرصہ ہوتا ہے حیوانوں کے بچے, تو اس میں خود بچے پیدا کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں جتنے میں ابھی یہ گھٹنے چلنے کے بھی قابل نہیں ہوتے. میاں صاحب دو اڑھائی سال تک کے لیے تو اتنا لمبا عرصہ جو ہے ماں کے دودھ سے رہتا ہے. حیوانوں میں سے کوئی حیوان بھی نہیں ہے کہ جس کا بچہ اتنے لمبے عرصے تک اس طرح سے اس نشو و نما کے اوپر رہے. اور پھر ماں کی محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا تو جی چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو انڈھیل دے بچے کے اندر, فکر اس بچے کی ہوتی ہے. ذرا دودھ میں کمی ہوئی ماری ماری پھرتی ہے کہ میرے دودھ میں کمی کیوں ہو گئی, بچہ بھوکا رہ جائے گا. اپنے دودھ کی افزائش کے لیے کہیں غذاؤں کا انتظام ہے, کہیں دواؤں کا انتظام ہے. بچہ اگر دودھ پیتا نہیں ہے کسی وقت تو یہ نہیں ہے کہ چلو اچھا ہوا آج کا دودھ تو بچ گیا نا میرا, اس نے نہیں دیا, اس کے لیے پھر وہ ماری ماری پھرتی ہے تو بچہ دودھ کیوں نہیں پی رہا. پھر ڈاکٹروں کے پاس جاتی ہے, پھر اس کے علاج کراتی. کیفیت یہ ہوتی ہے کہ سردیوں کی ٹھنڈی رات میں وہ بچہ ہے, سانس سلایا ہوا ہوتا ہے, وہ رات کو پیشاب کر دیتا ہے, وہ جگہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے, ماں خود ادھر سو جاتی ہے, بچے کو خشک جگہ کے اوپر سلاتی. अगर वहां बिस्तर पर जगह नहीं रहती है तो वो अपने पेट से उसको चलाती है, यानी उसकी जिंदगी का, उसकी कोशिशों का, सारा उम्मीदों का माहवरी ये बच्चा हो जाता है। पहले दिन से उसके ये जान बच्चा जो है बड़ा होगा, चेहरे लगेंगे, ये कुछ होगा, उतनी लंबी उसकी तमन्नाएं मरकूज होती हैं इस बच्चे के साथ। वो कहीं अब्बा अम्मा कुछ कहने लगता है तो पूछो नहीं ये किस तरह से नजर में आग बांधती है, जो खुशी में लड्डू तो सीम करती है कि बच्चे ने भूलना सीखा, और अगर वो दो कदम चलना सीखता है तो फिर तो पूछो नहीं कि माँ का दिल बलियों कितना उछलता है। तो एक एक को कह रही है कि तो अब तो उन्हें चलना भी सीख लिया है, अब चलता ही है, खड़ा होना भी लग गया है। यानी आप देखिए ये क्या जज्बा है जो ये पैदा हो गया। उसके बाद ये जो सालगिरह मनाने की चीज है ना, ये माँ के इसी सफर के जज्बे के उभार की एक शक्ल है। एक साल का हो गया अब बच्चा माशाल्लाह, दूसरी सालगिरह है अब इसकी। आप देखते हैं कि सारी तवज्जोहात का मरकज ये बच्चा हो जाता है। ये जज्बा किसने पैदा किया हुआ है? उसी खालिक ने पैदा किया हुआ है। लेकिन इसमें मैंने कहा है ना कि वो समान नशवन वाह जो दूध है वो तो उसका दिया हुआ है। अब उसके बाद उस तकसीम जो है आगे, उसका इंतजाम जो है, उसका इस्तेमाल जो है, उसमें अब इंसान साथ आ गया। और यही से आ जाइए एक नुक्ते की तरफ, बात आगे चलेगी माँ बाप की। तो और उसने जो समान नशवन वाह दिया महल या कोठी के अंदर रहने वाली बेगम साहबा के रहन में बच्चा हो, या उसके सर्वेंट क्वार्टर या झोंपड़ी के अंदर मजदूर की बीवी का बच्चा हो, कितने गरीब क्यों ना हो, खुदा की रहीमियत दोनों जगह यक्षा काम कर रही होती है। वहां अमीर और गरीब के बच्चे में कोई फर्क नहीं। जब बच्चा दुनिया में आता है, जिस किस्म का दूध जिस अंदाज से इस बेगम साहिबा के छातियों से आता है, उसी किस्म का उस मजदूर की बीवी की छातियों से आता है, उसकी रहीमियत में कोई फर्क नहीं होता। अब इसमें अगर किसी जगह कोताही होती है तो मैंने कहा ना इंसान बीच में आ गया। लेकिन वो जो दूध दे रहा है वो इस बच्चे की परवरिश के लिए सप्लाई जो कर रहा है इनके लिए, वो दोनों में यक्षा होता है। उसी तरह से दोनों में जो हर महीने लंबा अरसा होने के बाद मैंने कहा था ना कि वो दूध किस तरह से ज्यादा होता जला जाता है, दोनों बच्चे के मेदे में हजम की कुव्वत बढ़ती जाती है, वो दूध पतले से गाढ़ा होता चला जाता है कि गजाइयत ज्यादा हो, माइयत कम हो उसके अंदर। ये उस मजदूर की बीवी और ये जो रईस साहब है इनकी बीवी बादशाह की मलका भी कोई क्यों नहीं है, उन दोनों में ये यक्षा तौर पर ये निजाम तार फरमा रहता है, क्योंकि ये उसने अपने हाथ में रखा है। और दूही वो निजाम पहला जो है परवरिश का अपने हाथ में जो उसने रखा था दूध का, ये खत्म होता है और बच्चों की फिर परवरिश या उसकी नशोनुमा जो है इंसानों के हाथों से होती है। अब महल के बच्चे में और उस क्वार्टर के बच्चे में फर्क पैदा होगा। हालांकि वो जो सामान्य नशोनुमा दिया हुआ है वो उसी का दिया हुआ है, लेकिन अब इनके हाथ में है। तो जू ही सामान्य नशो नुमा इंसान के हाथ में आता है, तफरीक शुरू हो जाती है, और यह तफरीक शिर्क है। अल्लाह यही से सारे मसाइल शुरू होते हैं। बच्चे के दूध पीने तक तो कोई मसला नहीं था, ना उस गरीब मजदूर की बीवी के बच्चे में और ना बेगम साहबा के बच्चे में। जो मिलता है, जिस अंदाज से मिलता है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं होता जब तक रिजक, ये रिजक का अदा करना जो मैंने कहा, जब तक वो उसके हाथ में उसने रखा है अदा तो वही करता है, उस वक्त तक तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं पैदा होता। और जो ही जैसा मैंने अर्ज किया कि जिंदगी का अगला कदम उठता है, इंसानों के हाथों में रिजक की तकसीम आती है। रिजक पैदा इंसान करता ही नहीं है, ये अगला मरहला उसकी तकसीम का आता है। जो ही ये मरहला आता है और वो जो था वो मजदूर की बीवी का बेटा और ये जो था राजे का बेटा था, अब इसमें फर्क शुरू हो, अब सारी उम्र इसके अंदर फर्क रहेगा। था उसने तो कोई फर्क नहीं किया था, रहने मादर ने फर्क नहीं किया था, जो दूध उसने सप्लाई किया था इन दोनों बच्चों ने, उसने कोई फर्क नहीं किया था, लेकिन जब भी वो बच्चा कुछ खाने के काबिल हो जाता है तो अब जो इसके मुंह में लुकमा जाता है और उसके मुंह में लुकमा जाता है, अब यहाँ आके काफी फर्क पैदा हो जाता है। यह यहाँ शिरक हो जाता है, इंसान ने दखल देना शुरू कर दिया उसके अंदर। एक अगली चीज भी ले ली, मैंने कहा है ना कि ये माँ जी इसका चाहता है कि वो सब कुछ अपना खून अपनी रूह अपनी जान ढेर के बच्चे के अंदर डालते, इसकी कैफियत ये होती है। और मैंने जो अभी अभी कहा है कि वो अभी जरा दो कदम चलने लगता है तो इतनी खुशी होती है उसको कि अपने पांव में चलने लग गया। लेकिन जब यही बच्चा बड़ा होकर खुद अपने पांव पे चलने की कोशिश करता है और ये चाहता है कि मैं अपने पांव पर चलूं, तो फिर ये माँ और बाप उसे अपने पांव पे चलने नहीं देते, ये कहते हुए है कि नहीं हमारी मर्जी के मुताबिक तुम्हें चलना। और उसकी कैफियत ये है कि जो खुदा की तरफ से रिजक मिलता है वो रिजक दिए चला जाता है। सामान्य रिस्क मैंने कहा है ना, याद रखिएगा ये तकसीम रिस्क है जिसकी वजह से ये सारे तबकात पैदा हुए हैं और ये सारे अमीर और गरीब का फर्क पैदा हुआ। उसमें तो सामान्य रिस्क सबके लिए इसी तरह से दिया हुआ। अब फिर उस नुकते पे आइए कि ये जब अपने पांव पे चलने के काबिल होता है और चलना चाहता है तो फिर माँ बाप इसे नहीं चलने देते अपने पांव पे। लेकिन वो जो रिजल्ट दिए चला जा रहा है, ये जब बड़ा भी हो जाता है वो इसके अख्तियार इरादे को सलब नहीं हो पाता। वो कहता ये है कि अलहमदों का भवन शाह हमारा काम यह था कि हमने तुम्हें रिजल्ट भी दे दिया, हमने तुम्हें रास्ता भी दिखा दिया, अब तुम्हारा जी चाहे उधर जाओ, तुम्हारा जी चाहे उधर जाओ, हम दखल नहीं देंगे। अब माँ बाप और खुदा का फर्क शुरू हो गया। ईसा ने मन ऐसे ही नहीं है कि कुरान करीम ने क्या कि वालदान के साथ एहसान करो सारी दुनिया कहती है हाँ हाँ जी बड़ी बड़ी ठीक बात है जी। ये बात तो दीन के मिलनाट में दाखिल है। कुरान तो दरख्त पे किसी पत्ते की बात नहीं करता जिसके अंदर वही तहजीब नहीं होती, ये उसने जिक्र किया। ये क्या बात थी अनिश्कुर भी मेरे वाले बैठक एक आय पहले अनिश्कुर मिलना कहा है, वहाँ सिर्फ खुदा के मुकम्मत कहा है शुरू करो, यहाँ वालदान का जिक्र आया है तो इसके साथ कहा है कि इसका भी शुरू करो। लेकिन कहा यह है कि इनकी अटायत तुम पे फर्ज नहीं। और ये वो चीज है आपको याद हो कई दर्शकों में बात आ चुकी हुई है, दुनियावी जितने मुजाहद है उनकी किताबें भी देखी, अखलाकियात की किताबें भी देखी, हर जगह माँ बाप की अटायत फर्ज। और आप यहाँ तो मुसलमान माँ बाप की अटायत फर्ज, पुराने करीम ने कहीं यह नहीं कहा कि इसकी अटायत फर्ज, इनकी अटायत फर्ज। अबिल वालदैन एहसान, हर जगह यही, बल्कि यहाँ तो उसके खिलाफ ये कहा भी मार्ज करता कि अगर ये तुम्हें ये कहें कि खुदा के साथ किसी को शरीक भी करो, सिर्फ जिंदगी के किसी मामले में भी, ये हालात दे होना यानी इस सख्ती से रोक दिया है जिसे हम फर्ज कहते हैं कि अतायत फर्ज है, वो यहाँ रोका गया है कि बिल्कुल नहीं अतायत कर रही तुमने। ज्यादा से ज्यादा साहेब हमारे से दुनिया मारूफ हम साहरे मारूफ के मुताबिक इनका दुनिया के अंदर साथ दो, सफाकत करो इनके साथ, काम करो इनके साथ, इतायत नहीं है। इतायत को एक तरफ रहा वक्त सबीर मैंने अनाज अड़ैया, इतायत तो कहा कतन को बिल्कुल नहीं करना, बाकी ये रहा कि किसके नक्शे कदम पे चले उसके पीछे पीछे चले, तो कहा कि जो हमारे रास्ते पे चल रहा है उसके पीछे पीछे चले। बात पहले भी आ चुकी हुई है लेकिन चूंकि जहाँ ये आयतें आई हैं कुरान करीम की इसलिए उनका दोहराना जरूरी है। मैंने कहा है ना कि दुनिया के हर मजहब में किसी से सुनिए कि साहब जितने अखलाकियात वाले हैं उनसे भी सुनिए कि माँ बाप की अतायत कर ले। और आप हिंदू धर्म के अंदर तो आपको मालूम है कि ये वो रामचंद्र जी जो इनके यहाँ हैं वो वलीयत थे, दशरथ के बेटे थे, वलीयत थे सल्तनत के, तो इनके यहाँ राम को ईश्वर मानते हैं, ईश्वर का अवतार खुदा का अवतार उसकी प्रस्तुति होती है, खुदा की तो इनके यहाँ होती नहीं अवतारों की प्रस्तुति होती है ना, खुदा का अवतार मानते हैं राम को। क्या कारण माया सर अंजाम दिया था राम ने जिसकी वजह से उसको खुदा मानते हैं। बाप बुआ दशरथ उसने जवान बीवी से शादी कर ली, कई उसने वजाहत से नहीं कहना चाहता, उसने किस बूढ़े से कौल ले लिया कि तुम्हारे बाद मेरा बेटा वलीयाद होगा, हालांकि वो राम बड़ा था और वो वलीयाद में करे हो चुका हुआ था और ये उसको वहां का जो रामायण सही है वहां सारा। अब उसके बाद कर तो चुके तो बड़ा अफसोस हुआ, बेटे को बुलाया, कहने लगे बेटे कि मैं इसको मेरी बुढ़ापे की मत मारी हुई कहो या कोई और कहो, मैं ये तौल दे चुका हूँ, तो वली आदि जो है तुम्हारे पास नहीं रहती, उसके पास नजर आता था तुझे घर के अख्तियार करेंगे। यानी वहां लिखा है कि ये इतना गलत फैसला था तो बाप भी रो रहा था बेटा भी रो रहा था, लेकिन बेटे ने कहा कि बाप से कि पिताजी आप जब कॉल दे चुके हैं तो कॉल न हारिए, कोई बात नहीं मैं आपकी इतायत नहीं करेगा। कहा उसने कहा ये था कि यही नहीं कि ये वलीयाद ना रहे बल्कि इसको देश में काला दे दिया जाए, कहने लगे कि मैं कल ही चला जाता हूँ साहब, और ये राजपाट साथ छोड़ छाड़ के मुल्क भी छोड़ के और ये जंगल में चले गए। इनके यहाँ मैं बात इतनी से रखना चाहता हूँ, इनके यहाँ ये जो अमल था इस राम का कि उसने बाप को इस कौल के पालन में उसकी इतायत की और जंगल में चला गया, इनके यहाँ इतना बड़ा काम था कि कहा ये इंसान नहीं है तो खुदा है। यानी धर्म में ये बात, अमल की ये कैफियत, पैसठ की जंग में ये खून कर्म पता हुआ, मैं वहां गया भी था, तो हमारे फौजों ने ये बताया कि खेमकरण के हिंदू अच्छा मतमजल शहर था जैसे कपड़ा छोटा सा था, कि हम जो वहां गए हैं तो हमने देखा कि वहां सारे खेमकरण के अंदर कोई मर्द नहीं था, कोई जवान औरत वगैरह कोई नहीं थी, बूढ़े माँ बाप जो थे वो तमाम घरों के अंदर उत्साह से पड़े हुए थे, वो सारे उनको छोड़ के भाग गए यहाँ दुश्मन के इलाके में दुश्मन के पास। एक तरफ राज की कैफियत ये, अमल की कैफियत ये है। तो ये इन्होंने हमारे यहाँ के मुजाहिदीन ने, आपको तो याद होगा ये तारीफ, इन्होंने उनको वहां से उठाया था, नहायत हिफाजत से उनकी परवरिश के तरीके से उनकर वहां से उनको पहुंचाया था हमारे मुल्क के अंदर एक मकान पर जहां उनकी बड़ी उम्दा में लाश पर परवरिश हो रही थी, उनके बूढ़े माँ बाप जिनसे वो छोड़ के भाग गए। कुरान ने ना तो राम की बात कही, उसने तो उस वक्त इब्राहिम हमारे सामने पेश की, तो जिसकी इब्तदा यहाँ से होती है कि उन्होंने अपने बाप से कहा कि अब्बा जान आप ये क्या कर रहे हैं, अपने हाथ से सारा दिन ये दुख बनाते रहते हैं, शाम होती है तो उसके सामने सजदा करने लग जाते हैं, क्या हो गया आपको। उस वक्त इब्राहिमी ये है कि बाप भी गलत रास्ते पर चलता है तो बेटा उसके भी सोचता है। इनके यहाँ का उस वक्त ये था, राम ने अतायब की बात का कौल पाला जो गलत था, दोनों मान रहे थे वो गलत है और खुदा बना दिए, लेकिन इधर वो बाप को ये कहने वाले इब्राहिम को कहा कि तुम्हारे लिए इब्राहिम की जिंदगी उसमें है, दशरथ की नहीं, इब्राहिम की जिंदगी को उसमें कहा है, लेकिन उसके साथ ही माँ बाप के मुतल्लिक कहा कि अब्दुल वालिदैन एहसान, क्या सही मकाम है, ये एहसान क्या है। आपको मालूम होगा अरबी कायदे की रूह से भी और कई दफा मैं कह चुका हूँ, एहसान के माने होते हैं कि जो कमी किसी में पैदा हो जाए उस कमी को दूर कर दे। कुरान ने यह नहीं कहा कि माँ बाप की रोटी का इंतजाम जरूर कर दिया करो, सिर्फ ये बात नहीं, हर जगह यही कहा है कुरान ने। गौर की बात यह है कि ये कमी क्या वाकया होती है, ऐसे माँ बाप भी हैं और बहुत से होंगे कि वो जिंदगी के आखिरी दम तक बिल्कुल रही जमीन खाद जिंदगी बदल, इतना उनके पास रिस्क मौजूद होता है, इतनी दौलत मौजूद होती है, यानी वो भूखे नहीं मर रहे होते, फिर ये एहसान क्या है। हमारे जहन में तो यही है ना कि भाई बुढ़ापे में वो इस काबिल नहीं रहते कि कमाई करें, इसलिए उनको रोटी दिया करो, और फिर जिस तरह से रोटी दी जाती है वो मालूम है, उसने रोटी देने की बात नहीं की, जिसने मन कुरान का तो एक युक्ता गौर करे, बुढ़ापे में आके कमी क्या होती है, बुढ़ापे में तन्हाई हो जाती है और तन्हाई दुनिया में सबसे ज्यादा संगीन तरीन सुधार है, कैद के अंदर भी जब वहां भी कोई और जुर्म सरगद होता है तो कैद तन्हाई जो है वहां सॉलिटरी कंफाइनमेंट इंतहाई शरीर तनी सुधार दुनिया में होती है। बुढ़ापे में इस बूढ़े को सॉलिटरी कंफाइनमेंट हो जाती, उसके अपने वक्तों के रफीक दोस्त जिनके साथ वो बाधनी बातें कर सकता था, दिल बहला सकता था, वो एक एक करके उठते चले जाते हैं। अगली जनरेशन जो आती है उसमें और इसमें गैप होता है जज्बाती, ये उसके रफीक बन नहीं सकते। खुद बूढ़े जो है वो बड़े हो चुके हुए होते हैं, उनमें और इनमें जज्बाती फर्क होता है। तो ये जो चीज है ये कमी है सबसे बड़ी। फिर कुरान करीम कहता है कि उम्र के तकाजे से ऐसा दूर होता है कि इनकी अकल भी ऊंधी हो जाती है, ये कुछ चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, नाकसुल अकल हो जाते हैं, भूलने लग जाते हैं, हाफजा कमजोर हो जाता है। ये सारी कमी होती गई ना उनके अंदर। अब ये जो कुछ माँ बाप के साथ होता है वो डांट रहा है, वो झिड़क रहा है, अब अजी अभी आपसे ये कहा था कि आप, और उसके बाद वो दिन के साथ दो मिनट भी नहीं गुजरे कि आपने उसके खिलाफ कहा डांट रहा है, उसके बीच क्या कर दिया अभी आपने, सुबह कहा था आपसे जो लाए तो सद्दा जी को रोटी तो दी जाती है और ये कुछ हो रहा है उसके साथ तन्हाई उसकी। ये तो अभी वहां हो रहा है जहां अभी घर में कुछ जैन फैमिली है जिसके अंदर ही ये अब्बा जी या अम्मा जी रह रही है, वरना ऐसी सूरतें भी तो हैं हमारे नासिर में। तुलसीदास ने कहा है दिया जवाई ले गए और बहुएं ले गई पूत, दिया जवाई ले गए और बहुएं ले गई पूत, तुलसीदास मरोल जी तुम रह गए ऊट के ऊट। बेटिया अपने अपने घर में बैठती है, देखो कोई शादी हुई वो अपने अपने घर में बस रहे हैं। ये जिसका ये सब कुछ था बाग परिवार से करते हैं, ये तुलसी है नरोल जी क्या बात है नरोल जी, पता नहीं आप इसके बाद नहीं समझा तो ये जो है ना इस बेचारे का माँ बाप का इस उम्र में आकर ऊंट का ऊंट रह जाना, ये है असल में जो उनकी कमी होती है। बबुल वालदैन एहसानन, उनकी इस कमी को पूरा करो। हाँ हाँ यूरोप बड़ा एहसान जता रहा है, वेलफेयर स्टेट प्लान कर रही है, उन्होंने ओल्ड एज पेंशन भी मुकर की, ओल्ड एज हाउसिंग भी मुकर की है। मैं तो गया नहीं, जो लोग गए हैं वलायत खासतौर पर लंदन वगैरह में वो आगे बताते हैं कि इन बूढ़ों का बिचारों का वहां हशर क्या है। लोग खड़ाते हुए चलते हुए तन्हा अकेले हाइट पार्क की एक बेंच पे कहीं एक बैठा है, दूसरी पे दूसरा बैठा है, यानी कल ही सारी दुनिया के अंदर जिनका ये सारा जेन स्लीक था, आलम की सजा पूछो मालूम है तमन्ना से, बैठा हुआ दुनिया में उठ जाए जो दुनिया से, ये उठ जाता इससे पहले अगर दुनिया से तो ज्यादा अच्छा होता। कहते हैं उनसे बात करके देखिए उस हाइट पार्क में बेंच के ऊपर बैठे हुए थे, रोटी मिल रही है, कपड़ा मिल रहा है, तो उसके लिए ओल्ड एज के लिए कुछ होम्स भी उन्होंने बना रखे हैं, जिसको आप ये सामान कवरेज कह रहे हैं यही तो कमी नहीं है उसकी, कमी तो ये है उसकी। हर बुआ वहां रहता है, ये जो आपके यहाँ अवीला ने मन फैमिली सिस्टम जिसे आप कहते हैं, घर जिसे आप कहते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। इंसान तमद्दुनी हैवान वाकया हुआ है, सोशल एनिमल है। जब मैंने अर्ज किया है ना कि संगीन फ्री सजा इसकी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट तन्हाई की है, ये इसकी उस्ताद तकलीफ के खिलाफ है, तन्हा जो है इसका रहना, ये इंसानों के अंदर ही जा सकता है। जितना जीता है खाने पहनने को जीता है, आसाइशें भी सारी दे दीजिए, तन्हाई दीजिए, आप देखिए क्यामत बर्पा हो जाती है इंसान की। ये जो चीज थी कुरान करीम ने जो इस इंसान की तमद्दुनी जिंदगी की वो जो तकाजा है अंदर का, उसके लिए ये आपके यहाँ खानदानी जिंदगी जिसे आप कहते हैं वो जिंदगी रखी उसी है। कल तक हमारे यहाँ भी ये चीज अभी मौजूद थी, यूरोप में जहां और गरीब लड़कियां की उन्होंने इस आयली जिंदगी या फैमिली लाइफ जो है इसका नक्शा बिगाड़ दिया, तस्वूर ही खत्म कर दिया। वहां मैंने शायद पहले भी अर्ज किया था, यानी वो जो नक्शा खत्म किया है उन्होंने आयली जिंदगी का, उनकी जुबान के ऊपर देखो उनका कितना असर है इस चीज का। यानी हमारे यहाँ चाचा और होता है, मामू और होता है, फूफा और होता है, वो खालू और होता है, अपने अपने में कौन होते हैं इनके, वहाँ अंकल होता है, इन जमा बैंडा फिर दास, फिर नखेड़ जब करते हैं इसे नखेड़ी है, फिर वो कहते हैं मैं टरना लंकन से टरना, फिर भी बात नहीं समझ जाती। तो चाचा मामू तो हो गया या फालू फूफा, यानी इसके लिए जुबान में लफ्ज नहीं रहे, ये असर होता है फैमिली लाइफ को जाने। फादर इन लॉ तक तो बात जो भी चलती है, जब ब्रदर इन लॉ आता है ना तो फिर तो जैसे लॉ में कन्फ्यूजन हमारे हैं इसी तरह ब्रदर इन लॉ नहीं पता नहीं चलता, फायदा है डर वही है। यानी उनके हाथ उनके कुछ फर्क ही नहीं है दोनों में, वो इन लॉ वाली बात है, कानून ने इस लड़की को मेरी बीवी बना दिया, कानून की रूह से वो ये कुछ बन गया, यानी रिश्ता ही कानूनी है, इसलिए इधर का ब्रदर इंदा हुआ तो क्या, उधर का ब्रदर इंदा हुआ तो क्या, वरना अजीना ने मान फैमिली लाइफ के अंदर तो आप सोचते हैं कि बहन हुई है सारा क्या चीज होती। इसी तरह से उधर से वो कुफी और खाला और चची और वो ममानी और सारी आंटी होती है, हमारे यहाँ तो सूट की आंटी होती थी, उनके यहाँ फिर निकेड़ना पड़ता है इस किस्म की। यानी वो जो फैमिली के अंदर ताल्लुकात रिश्तों के अलग अलग थे, और बड़ा फर्क था अजीजा ने मन, आज शायद अगली जनरेशन समझ ना सके कि मामों में और चाचा में फर्क क्या होता था, लेकिन उन्होंने अपने यहाँ फैमिली का जो तसव्वुर था उसका नक्शा ही बदल दिया। वहां अब यूरोप के अंदर हाउसेज आपको मिलेंगे, होम्स नहीं मिलेंगे, होम और हाउस में बड़ा फर्क होता है। और इसका अगला फर्क तो वो अकबर बता दिए, तू है इस कदर मुहज्जब, कभी घर का मुंह न देख, कटी उम्र होटलों में मरे अस्पताल जाकर, इंसान और उसकी ये जिंदगी, इसके अंदरूनी फितरत, मैं इसलिए नहीं कहता कि मैंने कहा कि फितरत कुछ नहीं होती, इसका जो अंदरूनी इंसानी तकाजा है ये उसके खिलाफ है जिंदगी, कि कटी उम्र होटलों में और हमारे अस्पताल जाकर। पुराने क्रीम ने ये जो जोर दिया है वदुल वाले बहन ऐसा, हर जगह ये जोर देता चला जा रहा है, जहां लगवेश होनी थी, जहां नुक्स होना था इतायत का, वो चीज गलत है। कुरान ने इंसान को सहज इख्तियार इरादा पैदा किया, जब तक तो बच्चा माँ बाप की निगरानी का उनकी परवरिश का मोहताज है, अपने फैसले आप नहीं कर सकता, उस वक्त तक ठीक है, इनकी हदायत के मुताबिक चलना चाहिए उसको, ये उसके मुस्तकबिल की खैरखाही के लिए ये कुछ करेंगे। लेकिन जब वो इस उम्र में पहुंच गए कि वो खुद सहज इख्तियार इरादा हो गया है, उसे अपने फैसले आप करने होंगे। जब वो साहब इख्तियार इरादा होता है अजीजा ने मन, खुदा कहता है कि मैं नहीं दखल देता इसके इरादे में, तो तुम रब वाले ही लड़े हो गए। हम मन साहब कितने भेजने से कहता है हम दखल नहीं देते। और फिर वो दखल की बात भी जो है, जमाना बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है, आज से 50 साल पहले के दौर का जो इंसान है उम्र के एतबार से था वो आगे कितना ही चला गया हुआ हो, जमाने के एतबार से वो बहुत पीछे रह जाता है। एज इस नई मसल की होती है आगे, अलबत्ता उनको हदायत की सही रहनुमाई की जरूरत है, सही रास्ता दिखाने की जरूरत है, उनकी सही तालीम की जरूरत है, उनकी सही तरबियत की जरूरत है। ये सारा कुछ देने के बाद जब कुरान जैसा कहता है कि अल्हाक को नजर दे, यानी ये बात तो उन तक पहुंचाइए कि गलत और सही रास्ते कौन से हैं, तरबियत कीजिए, तालीम कीजिए, उनकी सब कुछ फैसले उनके आप ही ले चाहिए। इसीलिए कुरान करीम ने यह कहा कि फलायत तो होगा, रिफायत वाली बात जो है ये नहीं, साहेब हमारी दुनिया में रफाकत है उनके साथ, क्या बात है साहेब हमारा, उनके साथ रहो फायदे कानून के मुताबिक। और उसके लिए दूसरी जगह कहा कि अंदाज क्या होना चाहिए 17/23। तो बात वहीं से शुरू करता है हर जगह कि शिकायत और मजूमियत जो है वो तो सिर्फ खुदा की। पहली बात वक़ज़ा रब्बो का अल्लाह ताबदू इल्ला इयाहु, हुक्म ये है कि मासूमियत इतायत अख्तियार करनी है वो सिर्फ खुदा के अहकाम व क़वानीन से अख्तियार करनी है, किसी और की नहीं। अब खुदा के बाद जिन्होंने ये परवरिश किया था वो माँ बाप थे, जिनके शुक्रिया के मुतल्लिक अभी कहा गया है कि उनका शुक्रिया अदा करो। बाकी है माँ बाप कहा वबिल वालिदैन एहसान, उनके साथ ये ताल्लुक है तुम्हारा, उनकी कमी को पूरा करना है, उनका हुस्न बरकरार रखना है, उनका तवाज़ुन बरकरार रखना है। इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल कुबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तुकुल्लहुमा उफ्फ़ वला तन्हरहुमा वक़ुल्लहुमा क़ौलन करीमा। देखिए कि कुरान बड़े बड़े अहम जो मामले हैं उनके मुतल्लिक असूली हुक्म दिए जाते हैं, ज्यादा जुज़ियात में नहीं जाता। ये ऐसा मसला था जिसमें जुज़ियात तक वो जा रहा है कि अगर तुम्हारी जिंदगी में इनमें से दोनों या इनमें से कोई एक बुढ़ापे तक पहुंच जाए तो उनको झिड़का न करो, सख्ती से बात न किया करो, उनको कोई ऐसी हरकत ना हो जिससे उनके इज्जत नफ्स में फर्क आए। हम हर अजीब चीज है, क्या नफ्स है घर के अंदर वो जगह जहां आप कूड़ा करके फेंकते हैं ना, उसे कहते हैं मम्मी वला तन्हा, वो कूड़ा करके फेंकने का मकाम उनको ना मिले, रहे तो घर के अंदर ही वो, लेकिन ये कैफियत ना हो जिससे जरा भी उनके अगला लफ्ज जो है वकुल्लहुमा कौलन करीमन, वहां तो बात ही सारी होगी। कौल करीम तो यह है वला तक करम न बनी आदम, हमने हर इंसान को वाजिब तकरीम पैदा किया है, ये अभी तक इंसान है दूल्हा क्यों नहीं हो गया था, इंसान तो है। अगली चीज ये है कि तुम्हारे ऊपर दो असर है इसके ऊपर कि इसमें तुम्हारी परवरिश भी की हुई है, लेकिन इंसान को बहरहाल है। अब करीमा का लफ्ज बता रहा है कि उसने तकरीम इंसानियत पे जोर दिया है, कोई ऐसी हरकत सरगर्म ना हो उसके खिलाफ जिससे कि इसकी तकरीन इंसानियत में फर्क आए। ये है एहसान अजीजा ने मन, ये है जिसका बार बार हुक्म दे रहा है रब्बिल वालिदैन एहसान है, और ये इंसान के लिए ही था, ये हैवान का तो रिश्ता खत्म हो जाता है जिस वक्त भी वो बच्चा दूध से अलग हो जाता है, यानी परवरिश का जो जरिया है उसका आजाद हो जाता है उससे माँ से, तो ना माँ को पहचानता है ना बाप को पहचानता है, कसम सवाल ही नहीं, वहां होम होता ही नहीं उनके। यहाँ ये चीजें आप देख रहे हैं कि कितनी तकलीफ से चला जा रहा है। अभी दूसरे मकाम के जो उसके ऊपर है कि ये भाई उम्र के तकाले से बात चीजें जो है इसमें दोष आ जाता है, कमजोरी आ जाती है, ये ठीक है, लेकिन तुम्हारे यहाँ भी ये बात नहीं, तुम्हारे तो तवाजुन बरकरार है, तुम अपना तवाजुन क्यों खो रहे हो, रफ्तगी से ना पेश आओ, झुड़को नहीं, डांटो नहीं। और अगली बात ये कि कोई बात ऐसी न करो तो जिससे इसकी तकरी में इंसानियत में फर्क आ। वाखफिर न होमा गुना हो गुन्नर रहमत है, तो बाबा इन्होंने तुम्हारी परवरिश इस तरह से की थी जैसे कि हमने रहीमियत के मुताबिक की थी, कहा ये परवरिश देखते हो ना कि वो मुर्गी किस तरह से परवरिश करती है अपने बच्चों, खतरे से बचाने के लिए नहीं, सर्दी से बचाने के लिए भी परवरिश करती है अपने बच्चों, खतरे से ही बचाने के लिए नहीं, सर्दी से बचाने के लिए भी परों के नीचे ले लेती है। क्या बात है कुरान, ये परों के नीचे लेने वाली बात जो है यहाँ वो लफ्ज है वक्त लहमा जना, उनके सामने झुक झुक कर उनको अपने परों के नीचे ले दो, नीच काबिल हो गए हैं अब क्यों। वक्र रबिर हम हुमा कमा रबानी सगीरन, जब तुम छोटे छोटे चूहे थे तो इन्होंने तुम्हें लिया था ना अपने परों के नीचे, अब ये भी छोटे छोटे चूहे से ही हो गए, अब तुम लोग इनको अपने परों के नीचे कमाओ हुआ रख दिया जिस तरह से इन्होंने परवर। ये कुछ तो हुआ अजीजा ने मन, मैंने अभी अर्ज किया था कि वला तो तुम हो माँ और व तबे सदीला मैंने अनाबा, क्या बात, दो लफ्ज है इतायत भी इतबा भी। इतायत तो कहा कि किसी की करनी नहीं, इत्तेबा किसी की जाएगी, हिदायत तो है किसी के हुक्म सुमान, इत्तेदा है किसी के नक्शे कदम पे, किसी के पीछे पीछे चलना है। पीछे पीछे चलने के लिए तो ये ताकीद है कि मन अनाद आए रही, जो मेरी तरफ आ रहा है उसके पीछे पीछे ताकत है। लेकिन इतायत हो या इत्तेदा, इन दोनों के अंदर एक बड़ा बुनियादी नुकता है कुरान। इतायत तो हमारे यहाँ तो ओबीडियंस इसको कहते हैं, ओबेडी ऑर्डर्स होता है। उबे करने के अंदर तो इख्तियार इरादा होता ही नहीं, उबे करना होता है ना। लेकिन अरबी जुबान के अंदर इताअत उस ओबीडियंस को कहते हैं जो अपनी रजामंदी से की जाए, दिल जबर किसी हुक्म के मानना जो है उसके लिए लफ्ज इताअत आता ही नहीं। ये खजूर तक कर आज खुद गिर जाए उसे तो कहते हैं ताड़ना, आज खुद गिर जाए। जिसे झांपल से मार के खजूरों को झाड़ा जाए उसके लिए ताड़ना खल नहीं कहते, ये आज खुद तो नहीं गिर, इसको तो झाड़े लगाया गया। जो ओबीडियंस इस तरह से दी जाए वो अतायत में आती नहीं। खुदा की अतायत भी वो ये कह रहा है कि वो अतायत का लफ्ज है जहाँ वो कह रहा है इसको, दरगाह रगबत करना। बात ही सारी बुनियादी ये अजीजा ने मान, इंसान की तकरीम ये है कि उसके इरादे इख्तियार इरादे को सलब न किया जाए, अपने इख्तियार इरादे से ये कुछ करे। तो आज जिसे आप कहते हैं काम नकल हो, और इसी तरह से ये जो इत्तेदा है ये भी बिल जबर वाली बात नहीं है कि रस्सा बांध के उसके और उसके पीछे पीछे घसीटा जाए। नौजाईदा बच्चा जो है गाय का, आपने देखा होगा कि वो आगे आगे मार जाती है, वो बच्चा उसके पीछे पीछे चला जा रहा होता है, ये बार बार रगबत जा रहा होता है। उस माँ के अंदर इतनी कोशिश होती है उसके लिए, हाँ रोग की कोशिश क्यों ना हो, कि उसके लिए ये बच्चा बांध के उसके पीछे नहीं चलाया जाता, उस कोशिश की बिना के ऊपर उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। ये जो इस तरह से किसी इस गाय के बच्चे का इस तरह से पीछे चलना है, सिर्फ इसके लिए इत्तेदा का लग जाता है। जो भी आगे जा रहा है खुदा के रास्ते के ऊपर, वो इतनी उसकी चाल और उसका अंदाज दिलकश होना चाहिए कि वो यूं उसके पीछे चले ये जिस तरह से उस गाय के पीछे उसका बच्चा जाएगा। इत्तेहाद तो किसी और की करनी नहीं, इत्तेबा भी करना है तो उसका तो करना है, मन अनाज आ गई है तो मेरी तरफ आ रहा, और फिर इस अंदाज से करना जो मैंने अभी अर्ज किया, अल्फाज का इंतहान है असल इजाज जो है कुरान। ठीक है, उसने सलूक भी है माँ बाप के साथ, ये भी कहा है कि झेको भी नहीं डांटो भी नहीं, उनकी तकरीम इंसानियत के ऊपर कोई हर्फ ना आने पाए। लेकिन जहाँ मामला अदल और इंसाफ का आ जाए वहाँ ना माँ ना बाप ना भाई ना बहन कतर नहीं। शायद बताए इसको यहाँ कुरान करीम ने अदल का शहादत का ऐसा असूल दिया है जीवन मन, इससे बुलंद असूल तस्वुर में नहीं आ सकता। लॉ विटनेस के अंदर कवानी ने शहादत के अंदर तो एक तरफ रहा कि ऐसी प्रोविजन हो, इंसान के जहन में ये बात नहीं आ सकती थी। सुनिए वो क्या कहता है, अदल का दारोमदार शहादत पर होता, एविडेंस पर होता, बड़ी अहमियत है अदल। यानी यहाँ तक की कैफियत है कि खुद उस जज ने या मजिस्ट्रेट ने एक वाक्य अपनी आंखों से देखा हो और उसके सामने वो मुकदमा पेश हो रहा हो, गवाही जो है उसके खिलाफ जा रही है, कायदे कानून के मुताबिक जो उनका बनाया हुआ है उसका आंखों देखा है, जज को ये इख्तियार नहीं है कि वो ये कह रहे कि नहीं साहब मैंने अपनी आंखों से देखा था ऐसी इस वास्तव ये जुर्म है, उसको ये फैसला देखना होगा कि शहादत ये कहती है इसलिए मैं ये फैसला दे रहा हूँ। और ये बड़ी चीज है जिसे शहादत, लेकिन कुरान ने शहादत देने वाले के मुतल्लिक क्या कानून मुकर्रर किया या क्या खसूसियत मुकर्रर की है, यहाँ से सारा निजाम अदल जो है वो बदल जाएगा। या अय्युहल लज़ीना आमनू कूनू क़ज़्ज़ामीन बिल्क़िस्त शुहदा लिल्लाह, पहली चीज तो ये है शहादत देने वालों अदल का झंडा तुमने गाड़ना, जाओ शहादत देने के लिए, न मुद्दई की तरफ से न मुद्दा अलह की तरफ से, न मुल्ज़िम की तरफ से न मुस्तवीज की तरफ से, किसी की तरफ से नहीं जा, बल्कि शुहदा सिर्फ खुदा के हुक्म की तामील के लिए वहां जा, किसी की तरफ से नहीं जा। तो यहाँ जो दो तबके पहले दिन बन जाते हैं प्रोसिक्यूशन विटनेसेस और डिफेंस के विटनेसेस बनाओ, यहाँ किसा ही नहीं, वो दो पार्टियां बनाते ही नहीं, شہدان اس کے بھی اب جا کے شہادت دو. اب شہادت تمہاری جو ہے کسی کے خلاف جائے گی. کہا کسی کے خلاف بات سن لو. وَلَا عَلَىٰ أَنفُسَكُمْ تمہاری اپنی ذات کے خلاف بھی شہادت جائے تو سچی شہادت دو. اپنے خلاف سچی شہادت لائیے تو عزیز الامام جو اسٹینڈرڈ اور جو معیار کے لیے عدل کے پھر ذہن میں لائیے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ نظام بابندی اور نظام مصطفیٰ جسے ہم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہوتا کیا ہے. وَلَا عَلَىٰ أَنفُسَكُمْ اول والے رہے میں ہاں تمہارے ماں باپ کے خلاف بھی کیوں نہ جائے. اب یہاں کوئی رو رہا ہے اپنی ذات کے خلاف کیوں نہ جائے یہ نہیں ہے تو صرف والدین کے متعلق کتنا والدین کے متعلق یہ احکام سارے ہے کہ یہ اس اتنی عزت کرو اتنا مقام ان کو دو اتنا احسان کرو جھڑکو نہیں ڈانٹو نہیں تکریم نفس ان کی کرو سب کچھ لیکن جہاں عدل کا معاملہ آیا ہے اول والدین ہاں ماں باپ کے خلاف بھی کیوں نہ شہادت جائے اس کے خلاف بھی شہادت والا قربین کتنے ہی قریبی کیوں نہ ہو تمہارے ان کے بھی خلاف جاتی ہے شہادت تو جائے تم تو اللہ کے لیے اللہ کے گواہ بن کے گئے ہوئے ان یکون غنیا او فقیرا فالله اولی بهما کوئی پارٹی امیر ہے کوئی غریب ہے کوئی تعلق کوئی واسطہ نہیں تم تو خدا کی طرف سے گئے ہوئے ہو اس کا حق ان دونوں سے زیادہ تھا. فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا اپنے جذبات کا اتباع نہ کرو جو عدل کے راستے میں رکاوٹیں بن جایا کرتے ہیں. وَإِن تَلَوْا أَوْ تُعْرِضُوا مور توڑ کے بات بھی نہ کرو ابہام نہ ہو تلبیس نہ ہو زومانی نہ ہو پیش دار نہ ہو دو ٹوک کولو کولم سلیلا دیکھو ایسی دیوار ہوتی ہے نا جیسی وہ وزیر خان کی مسجد کی پچھلی دیوار ہے سب شدید اس کے ساتھ اس قسم کی کولو کولم سلیلا کھڑی نکھری ہوئی سیدھی بات ایسی بات کرو مور توڑ کے بات نہ کرو اور توڑ رجوع یہ بھی نہ کرو کہ سمن کے اوپر تعمیر ہی نہ ہونے دو یہ راز نہ کرتے اس لیے کہ یہ سب چیزیں تم ان لوگوں سے تو چھپا لو گے. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اس کے اوپر ایک اور بھی ہے جو تو ہر بات کی خبر اور ایمان اگر تمہارا یہ ہے کہ اس عدالت کے بعد ایک اور عدالت بھی ہے جہاں جا کے اس مقدمے کی اپیل ہو جانی ہے تو وہ عدالت و خداوندی ہے جو آخرت میں ہونی ہے اس کا دھیان رکھو کہ اپیل میں جا کے اگر تم نے کوئی ملزم ثابت ہو جانا ہے تو یہی کیوں نہیں اس بات کا فیصلہ کر لیں یہ تو پھر بھی کچھ شاید تھوڑی سزا دے تو وہاں تو پوچھو نہیں کیا ہوگا. اس واسطے میں عرض کر رہا تھا کہ والدین کے متعلق اتنے تاکید جو ہے اس تاکید کے باوجود یہ جہاں مقام عدل آتا ہے وہاں کسی کی ضروریات نہیں کرتا لیکن میں پھر آ جاؤں وہی والدین کے متعلق جو قرآن کریم نے یہ باتیں کہی ہیں ہوم لائف کے اندر یہ ہوتا ہے ایسی زندگی گھر کی ایسی زندگی ہونی چاہیے کہ یہ اس دوراتے کی عمر میں جہاں یہ تنہا رہ جاتے ہیں اور ویسے فزیکلی بھی بہت سی کمزوریاں آ جاتی ہیں ان میں سے کسی کمزوری کی بنا کے اوپر ان کی تقیم انسانیت میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے. ہوم لائف قرآن کی روح سے یہ ہے عزیز الامام اور اسی لیے وہ باقی بھی جو جس کو آپ رشتے داریاں کہتے ہیں یعنی وہ جو وہی خاندانی زندگی جسے آپ کہتے ہیں ہوم لائف جسے کہتے ہیں اس میں ذی القربیٰ بھی اس لیے اس میں شامل کیا ہے. لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ باتیں تو قرآن کی سزا کے اندر جو سانس لینا ہے یہ اس کی بات ہے جب تاکید کی جائے گی کہ صاحب کتنے سانس لیا کرو اور ایسے سانس لیا کرو تو وہ سانس یہ صاف سزا جو ہوا ہے اس کی تاکید ہے. یہ نان سائڈ پہ چھوڑ کے چلی جاتی ہیں یہ بسیں یہ نہیں کہا گیا کہ ان کے پیچھے منہ لگا کے جوڑ جوڑ کے سانس لیا کرو. قرآن کے یہ جتنے بھی احکام آپ کو ہدایات ملیں گی یہ اس نظام اور سزا کی ہیں کہ جس میں قرآن کے مطابق جو چیزیں ہو رہی ہوں جو بہرحال یہاں قرآن نے تاکید کی ہے کہ یاد رکھو ہماری رحیمیت کے ساتھ ماں باپ کی رحیمیت بھی شامل ہے. اس لیے انہیں جب کمزوری پیدا ہو جائے کسی معاملے میں کمی پیدا ہو جائے تو اس کو پورا کرو. ماں باپ سے یہ کہا گیا کہ یہ دیکھو ہمارے یہاں سے جو رزق ملتا تھا ہم طبقاتی تقسیم نہیں کرتے تھے یکساں رہتے تھے غریب اور امیر کے بچے کو. جب رزق کی تقسیم تمہارے ہاتھ میں آئے تو تم بھی یہ فرق نہ کرو आगे चल के माँ बाप से कहा कि हमने इतनी ताकीद कर दी है कि तुम्हारी तकलीफ मरीजों के नक्श कायम रहे, लेकिन इनके ऊपर गबर नहीं करना, मामलात इनके जो है ये अपने फैसले से करेंगे, हम नहीं दखल देते उनके इख्तियार इरादे में, तुम भी दखल ना इख्तियार इरादे में। और इनसे फिर बात ये कही कि याद रखो जो कुछ तुम करोगे उसके मुतालिक सोच लो कि मामला यही खत्म नहीं होता, बल्कि इन्नहा अगली आयत इन्नहा इन तको मिसकाला हब्बतिन मिन खर्दलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावात औ फिल अर्द याते बिहल्ला इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। लतीफुन खबीर, याद रखो पिछली आयत में था ना साओ नब्बे गुम बे ना कुम तुम का मरून, एक एक अमल जो है उसका नतीजा तुम्हारे सामने आ जाएगा। तो आगे ये बात बताई, अपने जेहन में ये ना रखो कि ये बात जो है हमने ऐसा इंतजाम कर दिया है कि किसी को पता नहीं होने दिया, हम कान खबर ही नहीं होने दिया, बड़ा इंतजाम कर दिया था, ये बात नहीं, यहाँ तुम इंतजाम कर सकते हो, एक आंख और है आगे। लतीफुल खबीर, माइक्रोस्कोपिक किसे कहते हैं ना, तो वो जर्रा का लफ्ज, वो जर्रा जो है कहा ये कि खाब वो चट्टान जैसी सख्तियों के अंदर छुपा दो तुम उस देवराज को, आसमान की बुलंदियों के ऊपर ले जाओ, जमीन की पश्तियों के अंदर ले जाओ, जहां जीते भी हो जाते थे हल्ला, वहां से निकाल के ले जाओ खुदा, जो सामने आएगा। और इसके मुतालिक तो कुरान करीम ने ये जो है निजाम अदल खुदा का कि तुम्हारे एक एक अमल का बल्कि दिल में गुजरने वाले ख्यालात तक भी अपना नतीजा खुदा के कानून के मुताबिक मुरतब करके रहते हैं, ये है सारा महवे कुरान की तालीम का और दीन का। तो ये कोई अमल भी ऐसा नहीं है कि जिसका नतीजा तुम्हें न भुगतना पड़े। ये 99.7 और 8 वमन यामल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। मिसकाल ज़र्रतिन यानी सुरैया बेटी को जरा मिसकाल ज़र्रतिन, मिसकाल ज़र्रतिन यानी ये चीज भी जो है समझाने के लिए तो कोई महसूस ही शायद कहनी चाहिए थी ना, खैर का निष्काल कर रहा थी, शर का निष्काल कर, कोई अमल जो है बिला नतीजा पैदा किए हुए नहीं रहता। अब ये अमल तो आ गए दोनों, खैर वो अमाल है जिनसे इंसान की जात की नशो नुमा हो जाती है, जात की नशो नुमा के लिए उसके जिस्म की परवरिश और नशो नुमा नहायत जरूरी है, क्योंकि यही वो घोड़ा है जिसके ऊपर इस सवार ने कम अज कम इस बुनियादी जिंदगी में सफर करना। मीन जितने भी हैं आपके यहाँ ट्रांसपोर्ट के या कम्युनिकेशन के, वो बड़े परफेक्ट होने चाहिए आपके मकासद को आगे पहुंचाने के लिए। इस दुनिया की जिंदगी जो है वो मकसद उसका ये है, तो घोड़े का तवाना होना तो बड़ा जरूरी है ना आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए। इसलिए इस दुनिया की जिंदगी या फिजिकल या तबी जिंदगी जो है, इस जिंदगी की खुशहाली कारगुजारी नशोनुमा का मिलना ये बड़ी मुकदम चीज है, लेकिन मकसूद भी बात नहीं है। क्या कह गया एक बार, मकाम परवरश आहो नाला है ये चमन, न सारे गुल के लिए है न आशियाओं के लिए। मकसूद भी बात ये जिंदगी नहीं है, पता भी ये वही है कि जैसा घोड़ा आपके यहाँ का मकसूद भी बात नहीं आपको मंजिल तक पहुँचाने का जरिया होता है। मकसूद भी बात इंसानी जात की, इसके नफ्स की, इसकी पर्सनैलिटी की, इसकी खुदी की नशो नुमा है, कुछ भी कह लीजिए, जिसमें मरने के बाद आगे चलना है। खैर हर वो अमल है जिससे उसकी नशो नुमा होती है, शर वो अमल है जिससे उसकी तकलीफ होती है, कमजोरी जिसमें पैदा होती है। अब ये जो चीज है, कुरान का अंदाज ये है कि एक बात कहते हुए अपनी मुसीबत बात भी कहते हैं और ये गलत या बातिल तसव्वुरात जो फैले हुए होते हैं साथ ही साथ उनकी तरबीत भी किया जाता है। सवाल ये है कि एक गुनाह सरजद हो गया, अब गुनाह का लफ्ज ले आइए, जो शर आप कहते हैं सुन कहते हैं उसको जुर्म कह दीजिए, वो एक सरजद हो गया तो बस उसके बाद गया है इंसान, बटकारा गया, बांधा बरगा हो गया, इम्कानात खत्म हो गए, कोई और पॉसिबिलिटीज नहीं रही। दुनियावी मजाक जितने पहले फैले हुए थे उनके यहां यही चीज। ईसाइयत ने तो ये बात कही कि हर बच्चा अपनी पैदाइश के साथ अपने अजली मां बाप के गुनाह की आलाइश लेकर आता है और वो धुल ही नहीं सकती किसी तरह किसी अमल से। अजीब बात है जिस तरह से ये कहा गया है। तो यूं नजर आता है तो जैसे इंसानों को तो पैदा किया और खुदा ने इस तरह पैदा किया कि आलाइश गुनाहों की उनके साथ दी और वो आलाइश धुल नहीं सकती। तो जो आलाइश वाले इंसान है वो तो जहन्नम में जाएंगे। तो ऐसा हुआ कि जैसा ये कुछ करने के बाद तराब का तस्वीर आइए तो उसके बाद खुदा को ये ख्याल आया कि हाँ ये मैं करके बैठा। ये तो जितने इंसान पैदा होते चले जाते हैं ये तो सारे जहन्नम में जाएंगे, जंगल में फेंके तो डर लेंगे किसी। यानी तस्वीर देखिए आप देखते हैं कि कदम कदम के ऊपर कितना फर्क आता है। इसमें कोई जरिया नहीं है इंसानों के जन्नत में जाने का, क्योंकि वो आलाइश में उसे साफ नहीं हो सकती, अमल के जरिए वो साफ नहीं हो सकती। तो क्या कदम सारे तो गए इस आलाइश के साथ ही गए सारे। तो वो यूं है ऐसा तस्वुर तो रात में पाया जाता है इसके लिए, बल्कि अंगीन में भी उम्मीद है। तो जैसे बहुत हम सोचा है बैठा है उसे तो उसके बाद ऐसी सूरत तो जैसे बेटे ने पूछा हो, मिसाल तमसीन में ये कर रहा हूँ कि अब हम क्या बात है आज आप बहुत अफसोस ज्यादा नजर आते हैं। उसने कहा बेटा क्या बात करूँ, वो एक घर बैठा हूँ, माज़ल्ला ये गलती है। अब उसका सपा नजर नहीं आता कि क्या किया जाए। इंसानों को पैदा कर रहा हूँ, हर इंसान आलाइश के साथ पैदा होता है, आलाइश वाला जन्नत में जा नहीं सकता, सब जहन्नम में जाएंगे। इतनी मखलूक पूरी और वो सारी की सारी जहन्नम में। अब इसके लिए कोई चारा का सूझता नहीं है, दबे या उठे क्या सूरत होगी। उन्होंने कहा बड़ी तो बात नहीं ऐसी इसमें, अफसोस की इसका हल है बेटे। आपका इकलौता बेटा हूँ मैं, ठीक है मुझे दुनिया में भेज दीजिए, ये लोग मुझे सलीब पे देकर मेरी जान देंगे। मेरा आप ऐलान कीजिए कि मेरे बेटे का खून जो है वो कफारा हो जाएगा इंसानों के गुनाह का। मैं गल मांगे इतनी सी बात नहीं पर आप यहाँ शाम सा बैठे हुए परेशान हो गए। मैं तो उसने भेज दिया ये सारा कुछ अजीजाने मान आपके लगे पे मुस्कुराहट आ जाती है। करोड़ दर करोड़ अरब दर अरब इंसान मानते चले आ रहे हैं, आज मान रहे हैं। तो वो आए उन्होंने उनको सलीब पे चढ़ा दिया, वो खून हुआ, खुदा ने ये ऐलान कर दिया कि जो भी मेरे बेटे के खून के कफारे पर ईमान रखेगा उसे जन्नत में दाखिल हम कर दिया। तो गुनाह अव्वली इनका इंसानों का इस बेटे का भी नहीं जो दुनिया में आया, अव्वली गुनाह माँ बाप का आदम और हव्वा का वो लग रहा है हर आने वाले बेटे पे। तो आप सोच रहे हैं कि ये क्या तस्वीर है, रांडा है बर्गा। वो बेटे के सलीब के बाद के इंसान तो यूं हुए, उससे पहले के इंसान भी तो इसी तरह से पैदा हुई थी। मैंने अर्ज किया है कि जरा सा भी आप अगर थोड़े से भी जहनी लेवल पे रैशनली इन चीजों को थिंक करें तो नजर आ जाता है कि इंसान क्या मानते चले आ रहे हैं। यही चीज हिंदू को यहाँ दर्शाएगा, पिछले जन्म में कोई इस किस्म का कर्म कर बैठे इस जन्म के अंदर चूहा पैदा हो गया, बिल्ली पैदा हो गया, कुत्ता पैदा हो गया, इधर पैदा हो गया। अब इस जन्म में जो जीने हैं वो कर ले, चूहा आदमी नहीं बन सकता, शूदर ब्राह्मण नहीं बन सकता, अमल का कोई दखल जो हमारा पिछले जन्म का कोई कर्म जिसका इसको इल्म नहीं तो मैं क्यों मारा गया। और कुछ भी कर ले इस जन्म के अंदर वो तब्दील नहीं हो सकता जो फैसला, क्या ये तसव्वुर है अजीजाने मन। कुरान क्या तसव्वुर है, इसने कहा कोई बात नहीं, मल इंसान काना गई था कमजोर वाक्य हुआ है, इससे लग्नशें हो सकती है, लग्नशों का इजाला भी हो सकता, सेहतमंद इंसान से भी किसी वक्त गलती हो जाती है खाने पीने में से भी। پہلے قدم اٹھانے سے صحیح. تو اگر کسی تیز وقت کی وجہ سے انسان کی موت ہی واقع اس وقت ہو جائے تو یہ تو جو بات نہ ہوئی ہے, اتنی اس نے اندر قوتوں میں باقیت رکھی ہوئی ہے کہ وہ اس کا ارادہ کر سکے. اور یہ طبیب جو ڈاکٹر کرتا کیا ہے, جسے علاج آپ کہتے ہیں, آج کی جو اندر قوت مداخلت ہوتی ہے نا, پاور آف ریزسٹنس ہوتی ہے, وہ اس کو طاقت دیتا ہے. اس کا نام علاج ہے کہ وہ مقابلہ کر لے اس شرط کا. تو اگر کسی وقت کوئی غلطی ایسی ہو گئی کہ جس سے یہ مرض جو ہے, کوئی بیماری جو ہے, کوئی نقصان والی چیز جو ہے, اس کا نتیجہ ایسا ہو گیا, تو اس کے لیے ایسی پروویژن رکھ دی گئی کہ اگر اس کا استعمال کر لیا جائے تو پاور آف ریزسٹنس جو ہے اتنی بڑھ جائے کہ وہ اس کا ازالہ کر دے. یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ کی غلطی سے ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو جائے. لیکن میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں بھی یہ تعلیم کے اندر جو نصاب رکھا ہوا ہے, تو ٹھیک ہے 100 مارکس ہیں پرچے کے, 50% بھی پاس مارکس لے لیجیے, پاس مارکس جو ہو جاتی ہیں ڈویژن میں اور چیزیں ہیں, یہ ہو جاتا ہے. 66% جو ہے مارکس وہ بھی پاس مارکس ہو جاتے ہیں. یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اس طالب علم کی اگلی کلاس میں جانے کی جو صلاحیت ہے وہ ایسی اتنی ہے کہ یہ جو اس میں کمی رہ گئی ہے وہ صلاحیت اس کو پورا کر دے گی. پروموٹ کر دو. یہ پروویژن رکھنا جو ہے کہ اگر کہیں غلطی ہو گئی ہے, اس غلطی کے ازالے کے لیے خدا کی طرف سے پروویژن رکھ دینا جو ہے, یہ اس کی رحمانیت کا تقاضا ہے کہ یوں ہی راندہ درگاہ نہ ہو جائے. غلطی ہوئی ہے, ختم ہوئی. یہودیت کے اندر توبہ نہیں ہے, میں بات بھول گیا تھا, یہودیوں کے یہاں توبہ نہیں ہے. ایک گناہ فرض ہوا, جہنم میں جائے. اب جہنم میں جائے تو اس کے بعد تو پھر معاملہ ختم ہوا. کون سا انسان ایسا لے آئے گے جسے گناہ فرض نہیں ہوا؟ جہنم میں چلے جاتے ہیں, اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ 2-3 دن کے بعد ہمارے جو بڑے اساتذہ, بڑے بزرگ گزرے ہیں نا, ان کو پتا چلے گا. جیسے وہ حوالات میں دے دیتے ہیں تو بعد میں پتہ چلتا ہے نا, وہ جاتے ہیں پھر زمانت وانے کے لیے. تیسرے دن ان کو پتہ چلے گا, یہ جائیں گے اور وہاں جا کے پھر خدا سے کہہ کے وہاں جہنم سے ہمیں نکال جائیں گے. یہودی آپ دیکھتے ہیں کہ کیا تھے یہ مذاہب, کیا ہیں یہ مذاہب. یہاں اس نے یہ چیز کہی تو مثقال ذرہ تن سامنے آئے گا, مثقال ذرہ تن شر کا بھی آئے گا, خر کا بھی آئے گا. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ان میں سے کسی کو ہم معاف کر دیں اور اس کا نتیجہ نہ نکلے. لیکن اصول ہمارے ہاں یہ ہے کہ وہاں تو میزان ترازو ہوگا. ایک پلڑے کے اندر تمہارے وہ خیر جو ہیں وہ رکھ دیے جائیں گے, وہ صحت مند قوتیں صلاحیتیں صحت کو برقرار رکھنے کی. دوسرے پلڑے کے اندر تمہارے ہاں یہ ریزسٹنس کی پاور جسے ہے وہ بھی رکھ دی جائے گی, دیکھ لیا جائے گا. دونوں طرف پلڑے ہوں گے, اس میں دیکھا یہ جائے گا. فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ, جس کا یہ پلڑا جو ہے صلاحیتوں کا یہ ڈوب گیا, اسے پروموٹ کر دیا جائے گا. فاما من خفت موازینہ فامہ, اور جس کا یہ پلڑا کمزور رہ گیا وہ حد نقصان میں رہے گا. تو جہاں یہ کہا کہ مثقال ذرہ تن بھی جو چیز ہوگی وہ سامنے آئے گی, اس کے ساتھ ہی یہ چیز کری کہ اس ایک غلط قدم سے یہ نہیں ہوگا کہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو جائے. لیکن شرط اس میں ایک بڑی ہے, بہت بڑی شرط یہ ہے کہ اس کا اعتراف کیا جائے کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی, اس کی ندامت, اس کی ذمہ داری اپنے اوپر لی جائے کہ میں اس غلطی کا ذمہ دار ہوں. کہا کہ جو یہ مانتا ہی نہیں ہے تو میں نے یہ غلطی کی ہے, میں اس کا ذمہ دار ہوں, اس کی اصلاح ہو نہیں سکتی. تو اصلاح کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے نا کہ کہے گا غلط تھا یہ قدم, تو غلط اس کو تسلیم کرے گا تو صحیح قدم اٹھائے گا نا. वो गलत रास्ते में चला जा रहा है, हर मुसाफिर उसे कहता है गलत रास्ते में जा रहे हो, कहेगा जाओगे तनु जी ठीक है तो चलता जा। तो पहली चीज जो उसको इसका एतराज हो कि ये रास्ता गलत हो गया, उसको इसकी नदामत हो कि मुझसे भूल चूक हो गई, वो जिम्मेदारी को कबूल करे उसकी कि मैं जिम्मेदार हूँ अपने इस एक्शन का। और फिर जो कई बार बादशाह में आगे वो दोहराई जाती है किस्सा है आदम और इबलीस है ही ये, कि आदम से भी एक लफ्ज़ हूँ इबलीस से भी एक मासूम। आदम से पूछा गया कि तुमने ये क्यों किया, उसने कहा कि रब्बना ज़लमना अन्फुसना वइल्लम तग़फिर लना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन, हमारे नश्व नुमा देने वाले मुझसे भूल हो गई, चूक हो गई, गलती हो गई, लफ्ज़िश हो गई, मैं इसका जिम्मेदार हूँ, मुझे इसकी नदामत है। पांचवी बात, तुमने जिम्मेदारी को कबूल किया और ये भी देखा कि ये लफ्ज़िश है तुम्हारी, कोई बात नहीं, हमेशा कभी इरादा दरगाह नहीं तुम हो सकते, फाइना या तीना तुम जिन्नी हो जाओ तमाम कड़िया हदाया सला खौफिन अलैहिम वलाहुम याहज़ुनून, हमारी तरफ से सही रास्ता गलत रास्ता दिखाने की चीजें आती रहेंगी, चले जाओ उसके बाद सही रास्ते पर चलने जाना कोई बात नहीं है, ये जो चीज थी तुम्हारी गलती गलत रास्ते पर चलने की इसका वाला हो जाएगा अगर सही रास्ते पर चले जाओगे। तो एतराज किया रब्बना ज़लमना अन्फुसना, आगे तुमने ये क्यों किया ये मासियत, मैंने किया तेरे हुक्म के बगैर तो कोई पत्ता नहीं हिल सकता, तेरे हुक्म और मंशा के बगैर मैं कैसे माफियत कर सकता हूँ, मैं जिम्मेदारी नहीं हूँ, कहा तेरी इखला से आने तक नहीं हो सकती। दूस तो कहते ही मायूस तो बड़ा अजीब निगामी अदल हकदार, तो वो जो चीज थी ना कि वो अगर कोई लगभग हो भी गई है तो उसके इवाले की सूरत पैदा हो सकती है, सूरत ये पैदा हो सकती है कि गलती को गलती माने, अपनी जिम्मेदारी को तस्लीम करो, कारों को माने ही ये है चौराहे से गलत रास्ते के ऊपर कदम रुक गया चलता गया, आगे चल के कहीं महसूस हुआ मालूम हुआ कि ये रास्ता गलत है जिधर मैं आ रहा हूँ, कि कहा कुरान ने कि सही रास्ते पर चलने के लिए पहली बात ये है ना कि जितना गलत रास्ता तय किया है पिछले पांव वहां फिर लौट के जाए उसी चौराहे पे, तो ये जो वहां से तीसरे पांव लौट के आना है अरबी में इसे तौबा कहते हैं, वहां खड़े खड़े अगर कहता रहेगा कि मैंने गलती की जो उधर आ गया क्या मेरी तौबा हजार बार तौबा सखुर्दा अरबी को लेकर हजार हजार तस्वीर और वहां खड़ा है वो अरब तो तौबा का मजबूत तो मामूल करते उसके लिए लौट के आए आ गया लौट के वहां पहुंच गया मंजिल मकसूद पे ही नहीं सर, अब सही रास्ते पर चलना भी तो हो। सारे कुरान में जब देखिए जहाँ मन ताबा रास्ता जो पलट के वहां आया और फिर सही रास्ते के ऊपर चला, तो कहा कि हमने फाटक बंद नहीं कर दिए होते जी एक दफा गलत रास्ते पर चलता है, सही रास्ते पर दरवाजे खुले रखते हैं, आ तो जाए इधर। अब जो मैंने उस दिन कहा था बड़ी अजीब चीज, इंसान जब पलट के आता है इस रास्ते की तरफ जिसे उसने कहा थे खुदा की तरफ आने वाला, तो अरबी जुबान में इसको तायब कहते हैं, पलट के आने वाला एक कदम उठा के आने वाला, खुदा ने बंदे के मुतल्लिक कहा है कि जब ये तायब होता है तो हम तवाब होते हैं, वो एक कदम पलटता है हम दो कदम आगे बढ़ते, गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है दो कदम आते जाए, एक रास्ते की ठीक है वो इंसान था वो भी कर सकता था खुदा नहीं था, आज हम जल्दी से आ जाए ये इंसान जो है ना कि जो गलती हो गई जो नुकसान हो गया उसके इजाले का इंसान रखा गया है ये है खुदा किया हमें, और इसके लिए उसने मवाजना पलड़े की मिसाल दे के बताई, बड़ी अजीब मिसाल है ये, झुकने वाला पलड़ा और उठने वाला पलड़ा, जिसका नेकियों का पलड़ा झुकता है ये नहीं कि बुराइयों के पलड़े में कुछ भी नहीं है, मासूम का तसव्वुर गलत है, लफ्ज़िश के इजाले का जो तसव्वुर है ये है सही खुदा, तो इसीलिए कहा जहाँ तो बेहल्ला एक एक जर्रा लाएगा सामने इन्नल्लाह लतीफ खबीर, बता नहीं सकते थे, लेकिन तो उसके बाद ये नहीं है कि वो लाके खुद यूं ही फैसला कर दे, पलड़े में डालेगा तो राजू खड़ा होगा,
इधर का भी उधर का भी दोनों हमने कहा ना खैरिन चढ़ा खैरिन जरा और तुम्हारे सामने होगा धर्म कांटा तो देख लीजिएगा जौन सा तलड़ा झुकेगा तो झुकने के बाद तो हमसे पूछने की भी जरूरत नहीं होगी सीधे घर में चले जाओगे। ये तसव्वुर दिया कुरान करीम ने अजीजा ने मन आज की आयात में वालदैन के मुतल्लिक बूढ़े माँ बाप के मुतल्लिक फैमिली लाइफ के मुतल्लिक उनकी तन्हाई के एहसास को मिटाने के मुतल्लिक तकरीने और इज्जत इंसानियत को बरकरार रखने के मुतल्लिक और हर इंसान के मुतल्लिक तो इस बाद में जो कुछ तुम ये करोगे हम जानते हैं कि तुम किस तरह कर रहे हैं हम तुम्हारे दिल के इरादों तक से वाकिफ हैं एक एक चीज जो है वो हमारे मीजान अदल में पहले तो हम ये कहते हैं ना कि आखिरत में जाके चुरेगी तो हर सांस में मीजान अदल मौजूद है उसका हर सांस में चुलता चला जाता है इसलिए जो पगड़ा तुम्हारा किसी वक्त लगवशों का भारी हो गया है तो कोई बात नहीं इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत अजीब असूल कुरान का है याद रखो तकरीबी काम कुछ अगर हो गए हैं तामीरी काम इतने ज्यादा करो कि वो बड़ा भी भर जाए और उसके जायद भी कुछ बच जाए तुम्हारे पास तकरीबात का और सय्यिआत का अजादा हसनात के जरिए से होता है जीजा ने उससे ज्यादा हसनात का पहली बात उसके बाद गालियां सीधी बात इस्लाह का यही पहलू है जो कुरान ने बयान किया है गलतियां हो गई हुई है माशरे में नुकसान हो गए हैं हसनात इतने ज्यादा तादाद में कर लो तो उसको भी ढांप दे उस पलड़े को और ये पलड़ा भी जो है झुक जाए तुम्हारा सूरह लुकमान की आयत आयत 16 तक अजीजा ने मन हम आ गए सत्य